पंचदशी ग्रंथ के अष्टम प्रकरण में विचार हम लोग कर रहे थे। कुटस्थ दीप है, अपना स्वरूप कुटस्थ है और जो विशिष्ट चेतन है वो अपना स्वरूप नहीं है, जिसको वाचार्थ बोलते हैं वो तो कल्पित है। तो भगवान भाष्यकार उन्होंने वाक्यवृत्ति ग्रंथ में कुटस्थ ब्रह्म को, साक्षी को चिदाभास से अलग माना है। तो ये समझ करके रखिएगा। तो टीकाकार ने उस श्लोक को भी उठाया। तो 25 नंबर श्लोक में विचार हुआ था और 26 नंबर श्लोक में इसका प्रारंभ किया। दोनों का स्वरूप अलग अलग है। कुटस्थ ब्रह्म का स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद है। चच्चिदावास का स्वरूप तो है, वो भी सच्चित आनंद है, लेकिन अपना स्वतंत्र रूप से नहीं है। पकड़ में है ना? हाँ, अंतकरण के साथ संबंध होने पर कुटस्थ ब्रह्म का अंतकरण जो मन है ये भी चेतन की तरह मालूम पड़ता है। मिथ्या होने पर भी सत्य की तरह मालूम पड़ता है और रसगुल्ला आदि खाने पर लगता है कि आनंद है। ये तो आनंद वो कुटस्थ का है, समझ में ना? इसलिए सच्चित आनंद जो है कुटस्थ ब्रह्म का, और वही भासता है अंतकरण में, और अज्ञान के कारण समझता है कि आनंद वगैरह तो विषय से आ रहा है, ध्यान में है ना? तो ये ध्यान में रखिए आप लोग। तो 26 नंबर श्लोक में शायद कल उच्चारण भी हुआ था, तो एक बार देख लो, उच्चारण कर लेते हम लोग। आत्मा भाषा श्रयाश्चैवम् मुखा भाषा श्रया यथा गम्यन्ते शास्त्रयुक्तिभ्या मिथ्याभासश्च वर्णितः। ये जो श्लोक है ना, ये उपदेश शास्त्री नामक ग्रंथ का है। भगवान भाष्यकार ने, शंकराचार्य भगवान ने ये ग्रंथ लिखा उपदेश शास्त्री, उसी का ये श्लोक है। तो पहले ये आक्षेप किया था, ये जो कूटस्थ ब्रह्म को तुम अलग मानते हो चिदावास से, ये तो आपकी कल्पना मात्र है, उसमें प्रमाण दिखाना चाहिए ना। तो प्रमाण, तो मुख्य प्रमाण क्या है हमारे यहाँ? मुख्य प्रमाण तो श्रुति प्रमाण है, समझ में है ना? श्रुति को स्वतः प्रमाण बोलते हैं। स्वतः प्रमाण मतलब अपने प्रामाण्य को सिद्ध करने के लिए प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं, समझ में कि नहीं? बाकी जितने प्रमाण है परतः प्रमाण हो गए कि नहीं? तो अपनी बुद्धि तब प्रमाण कहलाएगी इसका आधार यदि श्रुति हो तो। हमारा अनुभव तब प्रमाण कहलाएगा इस अनुभव का आधार श्रुति हो तो, हो गए कि नहीं? इसलिए कितने बड़े महापुरुष भी हो हैं, तो कितनी भी बुद्धि तेज हो, तो बुद्धि जो है ना वो शास्त्र से ऊपर नहीं होगी। शास्त्र से ऊपर कैसे होगी? शास्त्र से ऊपर हो जाएगा तो फिर अप्रामाणिक हो जाएगी बुद्धि उनकी, इसलिए शास्त्र के नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी, है ना? इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान भाष्यकार बोल रहे, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं इसलिए प्रवाह नहीं समझना है, शास्त्र भी कहता है। इसलिए शास्त्र को दिखा रहे भगवान भाष्यकार। आत्मा भाषा अश्रयश्चैव मुखा भाषा अश्रय यथा। जैसे दृष्टांत देखो, है ना? तो इस शरीर में मुख हो गया और नीचे सामने हो गया दीवार पर दर्पण, और दर्पण में हो गया प्रतिबिंब, हो गया कि नहीं? दर्पण चाहिए और दर्पण के सामने आपका मुख हो तब तो दर्पण में प्रतिबिंब दिखेगा, हो गया कि नहीं? तो इसी प्रकार दृष्टांत में क्या समझेंगे, ये शरीर के मुख्य स्थान पर कौन हो गया, कूटस्थ ब्रह्म। इसलिए इसको ठीक से समझ लेना चाहिए। और दर्पण के जगह पर कौन हो गया, अंतकरण हो गया। और प्रति जो उसके अंदर आभास है, प्रतिफलन के जगह पर कौन हो गया, चिदाभास हो गया। प्रतिबिंब के जगह पर चिदाभास हो गया। समझ आया, तीन हो गए। लेकिन दोनों में क्या अंतर है, दोनों में ये अंतर समझ लो, है ना। तो वहां पर तो शरीर का मुख परिचिन्न है, ये शरीर का मुख क्या होगा, परिचिन्न हो गया। तो इसके जगह पर जो कूटस्थ कहते हैं ये परिचिन्न नहीं है, ऐसा जो मैंने, इसलिए हम बार बार कहते हैं पहले मान लो दृष्टांत को, इसकी तरह ये होता है, लेकिन पूरी समानता नहीं होगी, है ना। जैसे गणित नहीं सिखाते हैं बच्चे को, तुम्हारे पास में चार ठे कलम है, दो ठो दे दिया तुम्हारे भैया को, तो कितना रहा उसके पास, रहा कुछ है नहीं ना वास्तविक, लेकिन तो मानना पड़ता है ना। और बच्चा बोलेगा मेरे पास कहाँ से, एक भी कलम नहीं, चार कहाँ से आ गए, तो उसको गणित समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार ये ऐसा मान लो बस, दर्पण जगह पर अंतकरण है और मुख की जगह पर कूटस्थ है, और प्रतिबिंब की जगह पर चिदाभास जीप हो गया, ऐसा मान लेना पड़ता है। तो विषमता क्या है, वहां पर शरीर का मुख तो परिचिन्न है, समझ में आया, और यहाँ पर कैसा है, परिचिन्न नहीं है, परिचिन्न नहीं, समझ में कि नहीं। हाँ, तो वहां पर दर्पण है, दर्पण दर्पण है, और यहाँ पर क्या हो गया, अंतकरण। लेकिन इसमें भी समानता नहीं है, है ना, है तो पांचवती वो भी, और ये भी पांचवती, लेकिन वो सात्विक नहीं है और ये सात्विक हो गया कि ना, वो तो तामस हो गया और ये तो कैसा है, साथ अंतर हुआ ना, ऐसा ये समझ लो। और दर्पण प्रतिबिंब दिखता है, दिखने पर भी वो चेतन की तरह मालूम नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर चेतन की तरह मालूम पड़ता है। और समानता क्या है, समानता दर्पण अंतकरण में समानता ये है, तो दर्पण में मुक्त तो नहीं है, लेकिन वहां पर मुख की तरह मालूम पड़ता है प्रतिबिंब। इसी प्रकार अंतकरण में भी देखो, अंतकरण में जो आभास पड़ रहा है ये वास्तविक आत्मा नहीं है, लेकिन आत्मा की तरह मालूम, जो अनुभूति हो रहा है ना मैं करके, अनुभूति को कैसे काटोगे, है ना। अच्छा ये देखो, यथा गम्यन्ते शास्त्र के द्वारा भी कहा जाता है, युक्ति के द्वारा भी कहा जाता है, ऐसा आभासश्च वर्णितः, चिदाभास का वर्णन किया गया है भगवान भाष्यकार के द्वारा उपदेश सहस्र नामक ग्रंथ में। टीका आप लोग देखो। तो श्लोक में आया आत्मा आभास आश्रयः, उसका अर्थ करते हैं समास, आत्मा च आभासश्च आश्रयश्च, है ना, आत्मा आभास आश्रयः, समास हो गया द्वंद समास, इसको द्वंद समास बोलते हैं, चार्थे द्वंद सूत्र आता है, इसलिए बोल दिया द्वंद समास, द्वंद समास हो गया, है ना। जैसे गुरुश्च ईश्वरश्च, गुरु ईश्वर है कि नहीं, गुरु ईश्वर हो गए, द्वंद समास हो गए। इसी प्रकार इसी प्रकार आगे भी समास है, मुखा आभास आश्रया इत्यत्रपि तथा, यहाँ पर भी द्वंद समास है, है ना, मुखम च आवासश्च और आश्रयश्च, मुख हो गया और क्या हो गया, आवास हो गया, और उसका आश्रय प्रतिबिंब का कौन हो, दर्पण, आश्रय ही अधिष्ठान नहीं, अधिष्ठान नहीं समझना है, है ना। अच्छा, मुखम प्रसिद्ध, मुख तो सब जानते हैं, शरीर में जो मुख है ना ये मुख हो गया, और आभास क्या है, मुख प्रतिबिंब, मुख का प्रतिबिंब पड़ रहा है, इसको ले लीजिए आभास शब्द से। और आश्रय कौन है प्रतिबिंब का? दर्पण, दर्पणादि ही। केवल दर्पण में नहीं दिखेगा ना, जल में भी दिखेगा है ना। कोई लोग थाली में देख लेते हैं, थाली जहां पर महात्मा लोग कमंडल, कमंडल में भोजन करेंगे है ना, और कमंडल में ही देख लेंगे है कि नहीं। गंगा जी से जल लाया, उसी कमंडल में देख कर त्रिपुण लगा देंगे, हो गया, दर्पण की क्या जरूरत है ना। अच्छा, ये कहते कमंडल को कभी छोड़ना नहीं चाहिए महात्मा लोग, कमंडल और दूसरा होता है डंडा। हाँ, डंडा भी है, परिवजन करेगा ना डंडा। और क्या है जो पहनते हैं हम लोग, लंगोटी, हाँ, कोकिन, किसी को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, ये हो गया ना, आश्रय कौन हो गया? दर्पण आदि से ले लीजिए, जहां जहां पर प्रतिबिंब दिख रहा है। त्रयम यथा प्रत्यक्षण अवगम्यते, ये प्रत्यक्ष है ना, तीन, मुख, दर्पण, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब, हो गया कि नहीं? तो प्रतिबिंब हो गया दर्पणस्थ और मुख हो गया शरीरस्थ, तो अलग होगा कि नहीं? कौन किससे अलग हुआ? नहीं, कौन किससे अलग हुआ? प्रतिबिंब से मुख अलग हुआ कि मुख से प्रतिबिंब अलग हुआ? दोनों नहीं चलेगा नहीं, प्रतिबिंब से मुख अलग है, मुख से प्रतिबिंब अलग नहीं है। समझ में? ध्यान, हाँ, दोनों में भेद तो है लेकिन एक तरफ चलेगा, दोनों तरफ नहीं चलेगा, क्योंकि मिथ्या सत्य से भिन्न नहीं होता है, लेकिन सत्य मिथ्या से भिन्न होता है। आए समझ में कि नहीं? जैसे रस्सी में सर्प दिख रहा है, दोनों में भेद तो है जरूर, लेकिन रस्सी से सर्प भिन्न नहीं है, लेकिन रस्सी सर्प से भिन्न होता है। इसमें का ब्रह्म में और जगत में भेद है, भेद है कि नहीं है? कि नहीं है? भेद भी है, अभेद भी है। हाँ, देखो कि ब्रह्म से जगत भिन्न नहीं है, मतलब अभिन्न हुआ है कि नहीं, लेकिन ब्रह्म जगत से भिन्न है कि अभिन्न है? पकड़, देखो घूम गए। अरे भाई, जगत ब्रह्म से भिन्न नहीं है, मतलब क्या हुआ, अभिन्न हुआ कि नहीं? लेकिन ब्रह्म जगत से भिन्न है कि अभिन्न है? कोई लोग अभिन्न बोल रहे हैं, भिन्न है भाई, भिन्न है, भिन्न है, आप समझे? क्योंकि दोनों सत्य नहीं ना है, दोनों सत्य मानेंगे तो एक दूसरे से भिन्न हो जाएगा। जैसे पुस्तक भी सत्य है, चश्मा भी सत्य, पुस्तक से चश्मा भिन्न है, चश्मा से पुस्तक भिन्न है, क्योंकि दोनों सत्य हो गए ना। लेकिन यहाँ पर बात तो नहीं हो रही है, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, इसलिए मिथ्या जगत ब्रह्म से अभिन्न होगा, लेकिन ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, इसलिए ब्रह्म सत्य जगत से क्या है, भिन्न है। है ना, ऐसा समझ कर रखिएगा। हाँ, क्योंकि एक सत्य दूसरा मिथ्या हो गया ना, इसलिए तो ये हो गया कूटस्थ आभास। प्रत्यक्षण अवगम्यते, आत्मा कूटस्थ आभास चिदाभास। ये देखो भाई, आत्मा का स्वरूप तो कूटस्थ है, लेकिन उसका आभास पड़ रहा है ना, प्रतिबिंब पड़ रहा है कहाँ पर? अंतकरण में। ये लो चिदाभास हो गया, चिदाभास हो गया। तो चिदाभास का आश्रय, चिदाभास का आश्रय, तो चिदाभास का आश्रय अंतकरणादि ही। आश्रय का अधिष्ठान नहीं कहा, ऐसे में ना, आश्रय अलग चीज है और अधिष्ठान अलग चीज है, समझ में कि नहीं? तो चिदाभास का अधिष्ठान कौन बनेगा? अंतकरण बनेगा या कूटस्थ बनेगा? अधिष्ठान कूटस्थ बनेगा, अंतकरण नहीं बनेगा, अंतकरण नहीं बनेगा। अंतःकरण में यद्यपि जीव भाव भासता है लेकिन अधिष्ठान नहीं होता, वो आश्रय है वहां पर। जीव भाव के लिए वो केवल निमित्त पड़ रहा है, आश्रय पड़ रहा है, अधिष्ठान नहीं होता है। यदि अधिष्ठान मानोगे तो अधिष्ठान के ज्ञान से कल्पित का बाद होता है, तो अंतःकरण का ज्ञान हो गया तो जीव भाव बाधित हो जाएगा, नहीं होगा। ब्रह्म का ज्ञान होने पर, कूटस्थ का भान होने पर जीव भाव नहीं रहेगा, ऐसा समझ में आएगी नहीं? ठीक है भाई, तो इसी प्रकार एक सिद्धांत है, सर्प भासता है रस्सी में, सर्प भासता है रस्सी में, है ना? लेकिन अधिष्ठान रस्सी है नहीं है, रस्सी अधिष्ठान नहीं है। ज्ञान रस्सी का हो जाएगा तो सर्प और कल नहीं भसेगा, बोलो भसेगा कि नहीं भसेगा? इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि रस्सी अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म ही अधिष्ठान है। कौन अधिष्ठान है? अब ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा है ना, तो सर्प का बाद होगा कि रस्सी का भी हो जाएगा? ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तो सपना बाधित होगा कि जागृत ही बाधित होगा? आप समझाई? इसलिए सपना और जागृत का अधिष्ठान तो तुरीय ब्रह्म ही है, ये एक सिद्धांत हो गया। इसलिए सर्प का अधिष्ठान जो आत्मा है चेतन, रस्सी का अधिष्ठान भी हुई है ना? इसलिए आश्रय और अधिष्ठान में अंतर होता है। मतलब जिसके जो जहां भास रहा है, जो जहां भास रहा है उसके ज्ञान से यदि बाधित हो जाएगा कल्पित, उसको अधिष्ठान कहा जाएगा। बात पढ़ में है कि नहीं? यद्यपि अंतकरण भासता है जीव, लेकिन अंतकरण जो है अधिष्ठान नहीं होता है। जीव का अधिष्ठान तो कौन है? मतलब जो अंतकरण को सत्ता दे रहा है, जो अंतकरण को सत्ता दे रहा है उसके ज्ञान से जीव भाव बाधित होगा। तो अंतकरण से पहले कूटस्थ है कि नहीं? आए समझ में ना? फिर अंतकरण में सत्ता कहां से आ रही है? कूटस्थ से आ रही है। यदि कूटस्थ ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तो अंतकरण में चला जाएगा और अंतकरण में जो आभास है वो भी नहीं रहेगा, बाधित है, नहीं रहेगा तो बाधित हो जाएगा, है ना? ये समझ लो, आश्रय अधिष्ठान अलग है। इसलिए यहां पर लिख दिया आश्रय अंतकरण है, त्रयोपि शास्त्र युक्तिभ्याम अवगम्यन्ते इत्यर्थ। शास्त्र से भी निश्चय होता है और युक्ति से भी निश्चय होता है, तीनों कूटस्थ अंतकरण और चिराभास, ये तीनों। आदि से ले लीजिए शरीर को, आदि से ले लीजिए शरीर को अथवा अविद्या को। कोई लोग जीव मानते हैं ना, अंतकरण अवच्छिन्न चेतन वो जीव है, कुछ लोग अविद्या अवच्छिन्न चेतन जीव है, ऐसा ही मानते हैं, समझ में आएगी नहीं? अथवा शरीर में जो भास रहा है वो भी क्या है? जीव है। अंतकरण में जो भास रहा है वो भी क्या है? जीव है। केवल अंतकरण नहीं समझना है, आदि से क्या लगे स्थूल शरीर, तो स्थूल शरीर को मैं मान रहे हो कि केवल अंतकरण के मान रहे हो? ऐसे में ना अंतकरण जैसे मैं करते हो ना, शरीर में भी मैं भाव तो होता है। चल आदि से वो ले लीजिए, तो जहां जहां पर जो है आप मानते हो सबको ले लीजिए। मतलब जहां पर चैतन्य की अनुभूति हो रही है, अंतकरण में अनुभूति हो रही है, शरीर में भी हो रही है, ऐसे में कि नहीं? ऐसा समझ लो। और अहम अज्ञानी बोलता है, क्या बोलता? अहम अज्ञानी बोलता है कि नहीं? तो अज्ञान के साथ मिला करके ही अपने को मैं बोल रहा है। इसलिए चैतन्य की अनुभूति कहां पर? अज्ञान में भी हो रही है, करेंगे हो रही है, सब ले लीजिए। अंतकरणादि त्रयोपि हो गया, शास्त्र से युक्ति से ऐसा निश्चय होता है। तो क्या शास्त्र है? दो लिखते हैं, आभास शब्देना कूटस्थ अतिरिक्त चिदाभास वर्णित इति भाव। आभास शब्द से क्या लेंगे? चिदाभास, है ना? और चिदाभास अलग हो गया, अभी ये मिथ्या है, और कूटस्थ कैसा है? सत्य है, भेद हो गया ना अभी चिदाभास। तो शास्त्र क्या है? उपनिषद। मनसः साक्षी, मनसः साक्षी, इसमें उद्धृत चिन्ह लगाओ। मनस के ऊपर म के ऊपर उद्धृत चिन्ह है ना, और साक्षी के ऊपर उद्धृत चिन्ह, ऐसे लिखते ना, इसे उद्धृत चिन्ह बोलते हैं। उद्धृत चिन्ह। तो मनस साक्षी और बुद्धि साक्षी, ये उपनिषद का है। नृसिंह उपनिषद एक उपनिषद है, नृसिंह उपनिषद उसी का है। तो उपनिषद बोलती है ये साक्षी है कुटस्थ, मन का ये साक्षी है। बुद्धि है साक्षी, श्रुति बोलती है बुद्धि का भी साक्षी, मन का भी साक्षी बोल दिया और बुद्धि का भी, तो कैसे अनुभूति होगी? कि मुझे संशय हो रहा है, क्या मुझे ठीक ठीक से नहीं मालूम पड़ रहा है, है ना, मुझे संशय हो रहा है, तो आप संशय को भी जानते हो कि नहीं, तो आप कैसे साक्षी होगे कि नहीं? तो ये मन का साक्षी हो गया, मन का साक्षी हो गया, हो गया कि नहीं? तो ऐसा होता है, घर छोड़ो कि ना छोड़ो, तो छोड़ो कि ना छोड़ो को कौन जा रहा, आप जान रहे हैं ना, ये संशय हो रहा। और फिर जब झटका लगा दिया हमको तो छोड़ना ही है, तो क्या हुआ? निश्चय का साक्षी हो गए, निश्चय का साक्षी हो गया कि नहीं, कि ये बुद्धि का साक्षी हो गया, है ना। तो ये एक ही अंतकरण है, जब संशय होगा तो वो अंतकरण क्या बोल देगा? मन। और निश्चय हो जाएगा तो उस अंतकरण का नाम क्या बोल दिया? बुद्धि। और कुछ नहीं, एक ही अंतकरण है। तो ये शास्त्र बोलता है बुद्धि साक्षिणा कुटस्थस्य प्रतिपादकम शास्त्रम, है ना। ये मनसा साक्षी बुद्धि साक्षी ये जो कह दिया शास्त्र है ना, उपनिषद का, नृसिंह उपनिषद का, तो क्या हुआ? बुद्धि का साक्षी कुटस्थ है। कौन नहीं हुआ फिर साक्षी? चिदाभास साक्षी नहीं हुआ, चिदाभास साक्षी नहीं हुआ। लेकिन जब क्या होता है ना, ध्यान में रखो, गड़बड़ी कहां पर होती है उसको ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कोई पूछा भी तुमको ज्ञान हुआ? नहीं नहीं मुझे ठीक से नहीं हुआ, संशय हो रहा है। तो संशय हो रहा है तो संशय का साक्षी तो कुटस्थ है, अपना स्वरूप है, है ना। लेकिन कुटस्थ अपना स्वरूप वही प्रकाशित किया, इस संशय को ऐसा भान इसलिए नहीं हो पाता है कि अंतकरण के साथ संबंध बना लिए है ना हमने, इसलिए वहां तक हमारी बुद्धि नहीं जाती है। तो बुद्धि जा ही नहीं सकती ना, तो बुद्धि का साक्षी भी तो जाएगी कैसे? बुद्धि है नहीं सच में, बुद्धि उसको पकड़ नहीं सकती है साक्षी को, जिससे आपको संशय हो रहा है, मतलब संशय का भान हो रहा है, जिससे आपको निश्चय हो रहा है, वहां तक बुद्धि नहीं जा सकती, बुद्धि उसको पकड़ नहीं सकती, नहीं पकड़ सकती है, वो बुद्धि का विषय नहीं ना, कैसे पकड़ेगी? लेकिन आपको घूम करके वहां पर जाना पड़ेगा। घूम करके मतलब है ना, बुद्धि जिससे भास रहा है वो मैं हूं, बस पकड़ में है कि नहीं? हाँ, जिससे ये प्रकाशित, ये जो प्रकाश हो रहा है ना वो है विद्युत, ऐसे पकड़ना पड़ेगा। बुद्धि कैसे जाएगी? बुद्धि का सामर्थ्य नहीं है वहां तक, बुद्धि का सामर्थ्य बाहर है, ये घड़ा है, पहिए है, ये है, है ना। तो उधर उधर पीछे नहीं जा सकती, जल तो नीचे जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, पकड़ में कि नहीं? ये होता है, इसलिए जब बुद्धि में सामर्थ्य होगी ना, हाँ बुद्धि ऐसे घूम जाएगी, बुद्धि घूम जाएगी। हाँ ये है, देखो बुद्धि साक्षिणा कुटस्थस्य प्रतिपादकम शास्त्रम, हो गया ना। अचिदावास का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र है, देखो बृहदारण्यक उपनिषद, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभुव, आत्मा तो एक ही है, कुटस्थ्यतन तो एक ही है, लेकिन जिसके साथ संबंध बना लिया तो तद्रूप मालूम पड़ता है, मालूम पड़ा कि नहीं? स्थूल ये जो है, स्थूल शरीर के साथ बना लिया तो आप कैसे हो गए? स्थूल हो गए कि नहीं, मैं मोटा हूं नहीं जानते हो मैं कितना मोटा हूं, बोलते कि नहीं, तो क्या आत्मा मोटा हो गया? देखो आत्मा ना मोटा है ना पतला है, तो स्थूल शरीर साथ बना लिया तो क्या हो गया, मोटा हो गया है ना। जैसे अग्नि का दृष्टांत देते ना, अग्नि तो अग्नि है लेकिन गोलाकार काष्ठ हो तो अग्नि कैसा दिखाई देती है, गोल गोल दिखाई देती है ना। तो इसी प्रकार आत्मा भी देखो, आत्मा का कोई आकार नहीं है लेकिन जिसके साथ संबंध बना लिया तो तद्रूप मालूम पड़ेगा वो, है ना। एक रेचिदाभास हो गया, रूपम रूपम प्रतिरूपो बहु, जैसा जैसा उपाधि का स्वरूप होगा ऐसा ऐसा आत्मा का चिदाभास का स्वरूप हो जाता है, ये कल्पित स्वरूप हो गया, कल्पित स्वरूप हो गया। तो इति चिदाभास प्रतिपादकम, ये चिदाभास को प्रतिपादन करने वाला कौन शास्त्र हो गया, बृहदारण्यक उपनिषद लिखा है उसमें, हाँ बृहदारण्यक उपनिषद। इसलिए क्या हो गया, विकारित्व अविकारित्वादि रूपाः युक्ति ही पूर्वम एव उक्ता इति भावः। युक्ति को तो पहले बता दिया, युक्ति को पहले बता दिया ना, एक हो गया कूटस्थ, एक हो गया चिदाभास, दोनों को अलग अलग क्यों कहा, कूटस्थ अविकारी है इसलिए साक्षी को कूटस्थ कहा, चिदाभास है कल्पित है क्यों है, अविकारी होने से, विकारी होने से, विकारी भी वास्तविक नहीं है चिदाभास, लेकिन जो विकारी है ना उसके साथ संबंध बना लिया तो ये भी विकारी हो गया, ये भी क्या हो गया, इसको बोलते हैं अध्यास, इसको क्या बोलते हैं अध्यास। तो अध्यास के बारे में भी समझ लो है, तो अध्यास भी, अध्यास को भी कई प्रकार से बोल देते हैं, तो इसका भी विचार थोड़ा सा कर लेना चाहिए। एक अध्यास होता है जो है ज्ञानाध्यास, और दूसरा होता है क्या, अर्थाध्यास। जो नए लोग होते हैं ना वो लोग इसको ठीक से समझ लो, एक होता है ज्ञानाध्यास और एक होता है अर्थाध्यास, ठीक है ना भी। लेकिन दोनों में अध्यास शब्द है, मतलब अध्यास शब्द का ये अर्थ समझ लो, जो चीज जिसमें नहीं है तो वही चीज उसमें यदि भासे तो उसको क्या बोलेंगे, अध्यास, ये देहाती भाषा में हो गया ना। जो चीज जिसमें नहीं है वहां पर वो चीज यदि भासे उसको क्या बोलेंगे, अध्यास बोलेंगे, अतस्मिन तद्बुद्धि। तो उस अध्यास को विद्वान लोग कई प्रकार से बोलते हैं, कई प्रकार की अनुभूति होती है इसलिए उसको एक नाम अलग अलग बोल देते हैं। तो एक हो गया ज्ञानाध्यास देखो, और दूसरा क्या होता है, अर्थाध्यास, ठीक है ना भाई। लेकिन एक शब्द के एक अर्थ नहीं होते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ हो जाते हैं, है ना। तो पहले समझ लो कि जैसे रस्सी में सर्प का भान हो रहा है, हो रहा है कि नहीं, है? तो कौन मिथ्या है, सर्प भी मिथ्या है, सर्प का ज्ञान भी है कि नहीं, इसलिए दोनों को अध्यास बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। सर्प का जो भान होना है ब्रह्म ज्ञान, भ्रांति ज्ञान, वो भी मिथ्या है, और सर्प तो मिथ्या है ही, दोनों कल्पित हो गया ना भैया। सर्प का ज्ञान भी मिथ्या है, और सर्प ज्ञान का जो विषय है ना वो भी मिथ्या है। तो सर्प ज्ञान जो बोलते हैं, सर्प ज्ञान जो आपको भास रहा है ना, भ्रांति ज्ञान, उसको बोलेंगे ज्ञानाध्यास, समझ में आया। और जो सर्प जो भास रहा है ना, किससे भास रहा है, साक्षी से, साक्षी से भास रहा है, साक्षी से सर्प का ज्ञान भी भास रहा है और साक्षी से सर्प भी भास रहा है, पकड़ में आएगी नहीं है, है ना। वो सर्प ज्ञान जो विषय है ना, है ना, वो ओ, 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 ओ किसका कार्य है, अविद्या का, किसका है वो, मतलब समझ लो अविद्या ही बन जाती है सर्प का ज्ञान के रूप से और स्वयं सर्प के विषय के रूप से, समझ में आएगी नहीं। इसलिए सर्प का जो भ्रांति ज्ञान है ना उसको बोलते हैं ज्ञानाध्यास, सर्प का भ्रम ज्ञान ज्ञानाध्यास क्या बोलेंगे ज्ञान। हाँ इसलिए तो आपको बता रहा हूँ, इसलिए किसी किसी को भ्रांति हो जाती है ना, भ्रांति में भी भ्रांति हो जाती है, नहीं हुआ क्या? ये भ्रांति है कि ना अध्यास, किसी में भ्रांति हो जाती है, भ्रांति में भी भ्रांति होती है। इसलिए आप लोग समझ लो भैया, तो एक हो गया ज्ञानाध्यास और दूसरा हो गया अर्थाध्यास। इसलिए ज्ञानाध्यास जो बोलेंगे ना उसका क्या होगा, ज्ञानम चासो अध्यास ज्ञानाध्यास, समझ में आया? ज्ञानम चासो अध्यास ज्ञानाध्यास, ज्ञान ही जहां पर अध्यास हो उसको बोलेंगे ज्ञानाध्यास। अध्यास हो गया कि नहीं, वहां तो रसी है वास्तविक, समझ में आया कि नहीं? लेकिन आप क्या आप क्या समझ लिए, सर्प, तो सर्प जो ज्ञान हो रहा है ना आपको कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, किससे हो रहा है, साक्षी से हो रहा है, साक्षी से हो रहा है, हाँ, तो साक्षी को भ्रांति है क्या? ध्यान में रखिए, प्रकाशित किया किसने कि उसको भ्रांति है? उसको भ्रांति नहीं है कि सर्पों का ज्ञान मुझे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनको भ्रांति नहीं है, ध्यान में रखो। लेकिन भ्रांति किसको हो रही है? नहीं नहीं, जीव को हो रही है, चिदाभास को हो रही है। देखो, प्रकाशित किया साक्षी ने, जाना किसने? नहीं नहीं, अरे प्रकाशित किया किसने? साक्षी ने, हाँ। लेकिन अभी जो बोल रहा है ना ये क्या है, सर्प ये कौन बोल रहा है? गड़बड़ी, चिदाभास हो गए, जीव हो गए, तो गड़बड़ी इसमें है। देखो कहां पर गड़बड़ी होते इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते ना। हम ही सब कुछ कर रहे हैं लेकिन वहां तक नहीं पहुंच रही हमारी बुद्धि, इसलिए जीव में रह गए, जीवभा में रह गए, तो ये ज्ञानाध्यास हो गया। ज्ञान ही जहां पर क्या हो, अध्यास हो, ज्ञानम चासो अध्यास ज्ञानाध्यास। तो सर्प का जो भ्रम ज्ञान हो रहा है ना ये हो गया ज्ञानाध्यास, और उसका जो विषय है ना सर्प ज्ञान का जो विषय है सर्प, उसको बोलते अर्थाध्यास, अर्थस्य अध्यास अर्थाध्यास ऐसा बोलेंगे, अर्थस्य अध्यास। इसलिए इसको और थोड़ा सा कल तो रविवार है ना, परसों इसके ऊपर थोड़ा सा विचार कर लेंगे कि इसका आपको निश्चय हो जाएगा कि अध्यास शब्द का प्रयोग कैसे कैसे होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमः पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति।